द्वाविमौ पुरुष लोके क्षरसाक्षरे च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षरोच्यते। द्वाविमौ पुरुष लोके क्षरसाक्षरे च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते। द्वौ इमौ लोके पुरुषौ, इस लोक में दो पुरुष हैं, एक है क्षर और दूसरा क्षर। इस लोक के मारे ये नहीं कि इस जमीन पर पड़े हुए हैं दो तरह के लोक, माने अब जिस हृदय में हम पहुंच गए हैं उस हृदयालोक में आपको क्षर और अक्षर ये दो पुरुष मिलेंगे। बाकी मनुष्य का स्वभाव तो बड़ा उचित है, एक बार आप उसे हृदय तक पहुंचा भी दो तो भी आगे की जब बात करने लगोगे तो हृदय में नहीं टिकेगा, लौट करके मैदान में यहीं चाह जाएगा, बाहर जगत में वहीं घूमने लगेगा। ये उसका जो है वो पुरानी पड़ी हुई आदत है। देखो परमात्मा तो हृदय में ही मिलता है, इसलिए हृदय में ठहरने का अभ्यास करना पड़ता है। योगियों को जो अष्टांग योगी हैं, ध्यान योगी हैं, उनको ध्यान में बैठ करके हृदय में रहते हुए परमात्मा तक पहुंचना पड़ता है। एक बात और बताऊं, देखो नई बात कि ज्ञानियों को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कोई शिष्य गुरु के पास बैठ करके आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का उपदेश ले रहा हो उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। वह उपदेश जो हो रहा है उसके साथ लगा रहे लगा रहे लगा रहे, उसको विचार करता रहे, समझता रहे समझता रहे, तो उपनिषद माने गुरु उपनिषद के द्वारा उसके हृदय शिष्य के हृदय में परमात्मा की स्थापना करा देगा, परमात्मा को दिखा देगा, वही देख लेगा। बिना आंखें बंद किए हुए भी हृदय तक आप पहुंच सकते हो और हृदय में परमात्मा को देख सकते हो। ये ज्ञान योग का सिद्धांत है। अब अगर आप इस समय आंखें न भी बंद करो तो जितना वर्णन चल रहा है उसके अनुसार मन बुद्धि की बात आ गई, मन बुद्धि के बाद फिर उसमें हृदय की बात आ गई, तो आप जिस हृदय तक पहुंच गए उसी हृदय में रहो, भले ही आंखें खोले रहो, भले ही आसपास देखते रहो, भले ही कानों से सुनते रहो, लेकिन रहो अपना केंद्र स्थल बनाए रहो हृदय को, और आगे की बात जो कुछ समझने की वो हृदय में ही समझो, शरीर में आकर के मत समझो, बाह्य जगत की वस्तुओं में आकर के मत समझो, व्यक्तियों में आकर के मत समझो, वही सब समझो। बस तो अपने हृदय में ही परमात्मा उसी समय दिख जाता है, जैसे ध्यान योगियों को ध्यान में परमात्मा दिख जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान योगियों को जिस समय कि वो वेदांत उपनिषद ज्ञान श्रवण कर रहे होते हैं उसी समय वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा दिखने भी लगता है उनको। उस परमात्मा को देखने के लिए कोई दूसरी और साधना नहीं करनी पड़ती, कोई दूसरे और उपाय नहीं करने पड़ते। इसलिए कहते हैं कि अब जहां जिस हृदय में पहुंच गए हो वहां देखो कि यहां पर दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर क्या है? क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितनी की भौतिक वस्तुएं हैं वो सब क्षर हैं। भूतानि, चाहे स्थूल पंचमहाभूत हो, चाहे सूक्ष्म पंचमहाभूत हो, चाहे सूक्ष्म पंचमहाभूत से बने हुए प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी हो, ये सब क्या है? क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये सब भूतानि हो गए, और क्षरा ये सब के सब क्षर हो गए। अक्षरा कूटस्थो अक्षर उच्चते, और जो कूटस्थ है वो अक्षर है। अब कूटस्थ क्या है? जो अपने अंदर जो मन बुद्धि की वृत्तियां और अपने अंदर जितनी भी प्रकृति है ये सब जो कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, दम बिगड़ रहा है, इसका अधिष्ठान क्या है? जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ है, वो अक्षर है। तो अपने हृदय में देखो एक कूटस्थ है और एक कूटस्थ के ऊपर क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला विकारी नाशवान एक है। तो देखो हमेशा गीता में कई जगह इस बात को कहा गया है कि अपने हृदय में परमात्मा को देखो, अभिभक्तम विभक्तेषु, एक जगह कहते हैं कि देखो जो विभक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बीच में एक अविभक्त तत्व है, वो परमात्मा है। यहाँ कहते हैं अपने हृदय में देखो जो क्षर है उसके स्थान पर ये अक्षर भी है, जो अक्षर है वो परमात्मा, जो क्षर है, क्षर के मन जो नाशवान है, अक्षर के मन जो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। ये दो देखने पड़ेंगे, इसलिए साधारण रूप में इस प्रकार से कह देते हैं कि देखो जैसे लॉजिक में कहा जाता है कि किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए जब हम तर्क का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा कांस्टेंट फैक्टर है और कौन कौन सा वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर देखने पड़ते हैं, वेरिएबल फैक्टर में जो चेंज हो रहा है और एक कांस्टेंट फैक्टर है। जैसे मान लो ये हो कि कई प्रकार की चीजें हम खाते हैं, उनमें से कौन सी चीज हमको नुकसान कर रही है, कैसे पता लगाओगे? अभी थोड़े जिसका बनाया उसका नाम दे दिया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट फैक्टर उसमें कौन सा जो नुकसान करता है वो कांस्टेंट फैक्टर है और बाकी वेरिएबल है। जिनके खाने से आपको नुकसान नहीं होता, ये खाया वो खाया वो खाया वो नुकसान नहीं करा कोई, लेकिन एक चीज जो खा रहे हैं कोई नुकसान करे, तो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो पकड़ में आ गया और वेरिएबल फैक्टर जो है तो सही अपने आप वहां से हटा करें कांस्टेंट फैक्टर पर ले आते हैं। देखो ये शोध कार्य करने का तरीका है, शोध कार्य चाहे साइंटिस्ट शोध कार्य करें, चाहे डॉक्टर लोग शोध कार्य करें, और चाहे कोई जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति शोध कार्य करे, शोध कार्य में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के जो विज्ञाता हैं उनमें से बहुत प्राचीन काल से शोध कार्य होते चले आ रहे हैं, ये देखते हैं कि ग्रहों ग्रहों की गति क्या है, कौन कौन ग्रह कहां पर किस गति से चलते हैं, उनका कैलकुलेशन वो करते रहते हैं। उन्होंने एक बार देखा कि ये बुध का ग्रह जो है वो एक स्थान पर आकर के वो अपने मार्ग को बदल देता है और बाकी चलता रहता है अपने मार्ग पर, जो उसका मार्ग है वो राउंड मार्ग है उसको चलता रहता है, लेकिन एक स्थान पर जब आता है तो थोड़ा दब जाता है और फिर घूम करके तब इस प्रकार से चलता है। तब कैसे पता लगे कि वो क्यों इस प्रकार से उसी स्थान पर जाकर के क्यों इस प्रकार से हो जाता? अब उन्होंने शोध कार्य किया, शोध कार्य किया तो देखा कि उस स्थान पर एक दूसरा ग्रह विद्यमान है, उसी के थोड़ी दूर पर उस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, इसके कारण से उसको रास्ता बदलना पड़ता है। देखो तो और जितने तारे थे वहां पर रास्ता नहीं बदलता, जितने और ग्रह थे वहां उसका रास्ता नहीं बदलता था, इसके माने उनका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, एक विशेष स्थान पर वो रास्ता अपना बदल रहा है, इसके माने उस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये जैसे हर कोई भी हमें तो आपको ये एस्ट्रोलॉजी का एक उदाहरण बताया, ऐसे सभी तमाम उदाहरण इस प्रकार के हैं, आप कहीं भी देख लोगे तो शोध कार्य ऐसे ही होता है। इसलिए पक्का करके मानो बैठे हृदय में कि हृदय में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक चेंजेबल है और एक कॉन्स्टेंट है। चेंजेबल है, वेरिएबल फैक्टर है, और दूसरा जो है कॉन्स्टेंट फैक्टर है। ये दो चीजें हृदय में है, अगर आपको खोजना है तो इसको सहारा लेकर के अपने हृदय में खोजो। बार बार जब हृदय में पहुंचते हैं परमात्मा के खोजने की बात आती है तब इनको बताना पड़ता है कि देखो ये वृत्तियां बदल रही हैं। ये वृत्तियां क्या हैं? ये भौतिक हैं, अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित हैं, वासनाओं से निर्मित हैं। ये जो वृत्तियां जो है ये वृत्तियां बदलती रहती हैं। इन वृत्तियां जहां से उत्पन्न होती हैं और जहां लीन होती हैं और जहां रह करके ये वृत्तियां चेंज होती हैं उसका जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ है। कूट के माने निहाई भी है, इसलिए कूटस्थ जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक निहाई के माने उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे एक सुनार की या लोहार की निहाई हो, उस निहाई के ऊपर वह जो है वो अपने बनाएगा, कूटे पीटेगा। एक उसने लोहे का टुकड़ा लिया, पीट पीट करके कौ चद्दर बना दे, कौ पीट पीट करके उसे लंबा बना दे उसे, तो इसके रूप उसके बदलते रहेंगे लेकिन निहाई जैसी की तैसी रहेगी। इसी प्रकार से हर वृत्ति, चाहे जो कोई भी वृत्ति हो, कोई विचार आवे, सब विचारों के अधिष्ठान में, आधार में एक निहाई की तरह से रखा हुआ, कुटस्थ रखा हुआ तत्व तो है, ध्यान दोष की तरह। आप अपनी वृत्तियों को ही न देखते रहो, अपने विचारों को न देखते रहो, ये तो बात ठीक है कि भाई हमें जो स्मरण आ रहा है वो स्मरण में परमात्मा की ही ज्ञान शक्ति कार्य कर रही है, तब स्मरण आ रहा है, वो तो बात पुरानी हो गई। अब ये देखो कि जो वृत्ति उत्पन्न होती है, लीन होती है, इसका अधिष्ठान क्या है। अधिष्ठान का अगर पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, दिखने लगा, तो आप कुटस्थ तक पहुंच गए। कुटस्थ तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कुटस्थ को कैसे प्राप्त करें, कैसे वहां तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसी का नाम यति है, यतन्ते योगिनश्चैनम्। अब यही यत्न करो अपने बुद्ध की वृत्तियों को। अब वृत्तियों को फिर उस कुटस्थ तक पहुंचने के लिए आचार्यों ने सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन किया, कहा कि देखो ये जो आपके विचार आते हैं, थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वृत्तियां हैं, ये एक तो विषयाकार वृत्तियां हैं, एक जो है वो हो ब्रह्माकार वृत्ति है। विषयाकार वृत्तियां जो है वो कैसी हैं, ये बदलती रहने वाली है। विषयाकार वृत्तियां, एक ब्रह्माकार वृत्ति है, वो वृत्ति जो है वो हो उत्पन्न होती, लीन होती रहती, उत्पन्न होती वृत्ति रहती, एक सी है लेकिन बदलती रहती है। फिर उसके बाद में अगर आप विषयाकार वृत्ति से जैसे ओंकार का उच्चारण करो, तो ओंकार की वृत्ति पर आ जाओ, तो बार बार ओंकार की वृत्ति का उच्चारण हो, अब विषयाकार वृत्ति से छुटकारा हो गया। अब लेकिन ओंकार की वृत्ति भी बार बार उत्पन्न हो रही, बार बार लीन हो रही है, तो वहां पर भी ध्यान दो और आगे बढ़ो। और आगे क्या बढ़ो कि देखो कि एक अवस्था तो वो है जबकि वृत्ति उत्पन्न हो रही, लीन हो रही है, और दूसरी अवस्था वो है जबकि वृत्ति का लय हो गया है, वृत्ति कोई है ही नहीं। जिस समय वृत्ति कोई नहीं है उस समय क्या है, उस समय वही कूटस्थ है। और क्या है कूटस्थ के लक्षण, सब उस समय आपको अपने हृदय में उपलब्ध हो जाएंगे, उनको पहचान लो। यहां तक पहुंचा दिया भगवान। आप ये मत समझो कि ऐसे साधारण से श्लोक गाड़ी खत्म हो गए, अब आप कूटस्थ तक पहुंच गए। कूटस्थो अक्षर उच्चते, अब कूटस्थ में अक्षरता है, ये देख लो कि देखो जो वृत्तियां थी, विचार थे, वो तो अक्षर थे, आते थे, जाते थे, बदलते थे, लेकिन अब ये कूटस्थ आ गए, यहां पर आ गए, इसमें क्या बदलाव हो रहा है। यहां तो एक शांति है वो निरंतर विद्यमान, यहां जो चेतना है निरंतर विद्यमान है, यहां निर्विकारता निरंतर विद्यमान है, यहां जो कुछ जो कुछ अनुभव है वो एक सा अनुभव सदा बना ही हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए कूटस्थ है। इसके आगे में भी चल रहा है, यात्रा खत्म नहीं हो गई, वो कल देखेंगे आगे।